आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। फेडरल विपक्ष ने यह दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान रक्षा खर्च अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा खर्च को बढ़ाने की जरूरत है। नीदरलैंड्स में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य खर्च बढ़ाने के दबाव को खारिज करते हुए कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने सैन्य जरूरतों के अनुसार खुद ही खर्च का स्तर तय करेगा। ये बयान उस समय आया जब नाटो के सदस्य देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है ने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। विपक्ष के रक्षा प्रवक्ता एंगस टेलर का कहना है कि सरकार को भी इसी तरह रक्षा खर्च को GDP के कम से कम 3% तक बढ़ाना चाहिए ताकि देश की सैन्य तैयारियां एक अस्थिर होती वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से निपटने के लिए सक्षम हो सके। वहीं नेशनल पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड ने 3 मई को हुए चुनाव में गठबंधन की करारी हार के बावजूद जोश के साथ वापसी का संकल्प लिया है। शैडो कैबिनेट के एक अहम बैठक से पहले बात करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन को अपनी हालिया हार से सीख लेनी चाहिए और जनता की बात सुननी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को अब संभल कर खड़ा होना होगा और पिछले कार्यकाल की सकारात्मक उपलब्धियों पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि इस देश की मूलभूत परिस्थितियां अब भी नहीं बदली हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग अब भी मुश्किल में हैं। वे अब भी रोज रात के खाने का इंतजाम करने के लिए जूझ रहे हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना भी मुश्किल पा रहे हैं। उनकी जीवन शैली का स्तर गिर चुका है और ये गिरावट जारी है क्योंकि इस सरकार की विचारधारा जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खा रही। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का मूड बदलेगा, जैसे इस चुनाव में बदला वैसे फिर बदलेगा और जब बदलेगा तो जोरदार तरीके से बदलेगा। वहीं दूसरी ओर न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से कथित तौर पर चुराए गए 100 गीगाबाइट डेटा से अधिक को जब्त कर लिया गया है। ये डेटा एक छात्रा द्वारा किए गए साइबर हमलों की श्रृंखला का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को किंग्सवुड इलाके में एक तलाशी के दौरान 27 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि ये साइबर हमला 2021 में शुरू हुआ था जब आरोपी ने पार्किंग के लिए अनाधिकृत छूट प्राप्त करने की कोशिश की। इसके बाद इस महिला पर आरोप है कि उसने अपने शैक्षणिक परिणामों में परिवर्तन करने के लिए हैकिंग को और बढ़ाया और अन्य छात्रों के गोपनीय डेटा को डार्क वेब पर बेचने की धमकी भी दी। पुलिस का मानना है कि सैकड़ों कर्मचारी और छात्र इस साइबर हमले से प्रभावित हुए हैं। डिटेक्टिव एक्टिंग सुपरिटेंडेंट जेसन स्मिथ का कहना है कि पुलिस को संदेह है कि महिला यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक निजी नाराजगी रखती थी। वहीं वर्ल्ड फीमेल रेंजर वीक के अवसर पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे, जिसे गाथा गुरु के नाम से भी जाना जाता है, में काम कर रही इंडिजिनस महिला रेंजरों को उनके संरक्षण कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे पश्चिम किनारा है जो पर्थ से लगभग 800 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये उन 20 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है जिन्हें प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए मान्यता दी गई है। मलगना समुदाय की नेलिशा ओकली कहती हैं कि उन्होंने 2 साल पहले रेंजर के रूप में काम करना शुरू किया ताकि भूमि से गहरा जुड़ाव स्थापित कर सके और उन बुजुर्गों से मिली अनोखी जिम्मेदारी को निभा सके जिन्होंने पीढ़ियों से इस धरती की देखभाल की है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के प्रमुख का कहना है कि पिछले सप्ताहांत हुए अमेरिकी हमलों में ईरान की परमाणु सुविधाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने एक बयान जारी कर कहा कि इन हमलों से जो क्षति हुई उसकी भरपाई करने में वर्षों लग सकते हैं। गुप्तचर एजेंसी का ये आकलन उस लीक हुए खुफिया रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसमें इन हमलों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए थे। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अहम हिस्सों को नुकसान नहीं हुआ है। CIA के बयान में रैटक्लिफ ने कहा कि नई खुफिया जानकारी के अनुसार संबंधित सुविधाएं नष्ट हो गई हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि विस्थल पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। और अंत में खबरें भारत से। भारत देश के कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश ने तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग लापता हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी है। कश्मीर में भी बारिश ने राहत और कहर दोनों साथ लाए। कुछ हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जम्मू में तवी नदी में अचानक बाढ़ के कारण 9 लोग फंस गए। बाद में इन्हें SDRF की टीम ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात हैं। प्रशासन को बाढ़ और जल भराव के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 190 मिलीमीटर की बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। दिल्ली NCR में 1 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 27 और 29 जून को गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रहेगा, लेकिन उमस भी बनी रहेगी। इसी के साथ 26 जून 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।